السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البتاع عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. عزيزان اگرامی، اپنے مشن کو نہ بھولائیں، اور ہمارا مشن اسلام کا مشن آفاقی دین، آفاقی حکومت، جہاں پر بارڈرز نہ ہوں، سکون ہی سکون ہو، امن و امان ہو، ایسی حکومت اللہ کے ولی ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. انشاءاللہ وہ جلد آنے والے ہیں. ان کی حکومت کی تیاری کے ساتھ ساتھ دعا اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ تیاری بھی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي آمين. انشاءاللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس کے ساتھ یہ دعا، قرآنی دعا، سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد، فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان گرامی، مورل سائنس ان اسلام ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 262 آیت ہے. اور جب آپ سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کھول کر کے قرآن پڑھتے بھی جائیے. ذاتِ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اموال کو، مال کو، اپنے ایبیلٹیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو خرچ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، بس اللہ کے لیے کیا اور ختم کر دیا، لیکن اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے. بعض لوگ کسی پر مہربانی کر کے، کسی پر فیور کر کے طعنے بازی کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں تمہارے لیے کیا. نہ ہی منت ڈالنا ہے، نہ ہی اذیت دینا ہے، چونکہ میں نے کیا تم کو یہ کرنا چاہیے. تو نہ ہی منت، نہ ہی اذیت، اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو پھر وہ جتنا بھی انفاق ہوا ہے وہ سب باطل ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے ہوں لہم اجرہم عند ربہم. اب اس کا اجر، ہم لوگ ٹینجیبل بینگ، ٹینجیبل دنیا میں رہنے والے، اس کو سمجھ میں نہیں پاتے، اللہ کے پاس ہے. سب سے بہترین چیز ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم و رنج ہے. یہ ڈپریشن وغیرہ وغیرہ کی حل کا ایک واحد یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انفاق کریں. انفاق یعنی گیونگ اٹ اوے. انفاق، صدقہ، چیریٹی صرف یہ نہیں کہ مانیٹری ہی ہو، پیسہ ہی ہو، اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں چند باتوں کی طرف توجہ دلا رہی ہے. اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی اخلاق عملی کی اہمیت اور اس کی شرطوں سے متعلق. گفتگو بہت ہو چکی ہے، میں مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. جن کو دیکھنا ہے وہ آرکیوز میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یوٹیوب میں بھی موجود ہیں اہل بیت ٹی وی کے ساتھ. ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری کی شرطیں کیا ہیں، یعنی مورلز جو ہوتے ہیں کسی پر، اس کے یہ اخلاق ہیں اور اس کو یہ انجام دینا چاہیے. دیز آر دا ریسپانسبلٹیز جب کہا جاتا ہے، وہ کنڈیشنز ان کے کیا ہیں. پہلی کنڈیشن جو ہمارے پاس دین نے بتائی ہے وہ بلوغ ہے. بلوغ سے مراد میچورٹی. میچورٹی جو کانسیپٹ، پرسپیکٹیو آف میچورٹی، ہمارے پاس بلوغ کئی طرح کا ہے. بلوغ جسمی، بلوغ شرعی، بلوغ مالی وغیرہ، بلوغ عقلی. بلوغ شرعی لٹ بٹ ارلیئر ہے، جیسے لڑکی جو ہے 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے، تو اس کے معنی کہ 9 سال سے پہلے ماں باپ اس کو شریعت کے بہت اہم اصول جو اس کی زندگی کے ساتھ بہت ضروری ہیں، حلال و حرام وغیرہ سے متعلق بتانا چاہیے، اس کو معلوم ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جیسے ہی بالغ ہوگی اس پر ذمہ دار ہو جائے، ذمہ داری آ جائے گی. اسی طرح سے لڑکے کے لیے 13-14 ایج وائز 15 ہے، لیکن عموماً جو سائنس بتائے گئے ہیں لڑکوں کے بالغ ہونے کے، اس میں 13 یا 14 سال میں ہمارے عموماً بچے بالغ ہو جاتے ہیں. یہ بلوغ کی شرط کیوں ہے ایک بحث ہے. جیسے ہم ویسٹرن کنٹریز میں بھی، سیکولر کنٹریز میں بھی موجود ہیں مائنرز کے کرائم، کرمنالوجی میں جو لوگ مائنرز ہوتے ہیں، جو لوگ ناٹ بالغ ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، ان کے پاس مائنرز میں بھی کہیں 16 سے بلو ہے، کہیں 18 سے بلو ہے. ان لوگوں کے لیے الگ سے کورٹ رکھے گئے ہیں، الگ سے ان کا قانون رکھا گیا ہے، الگ سے ان کو دیکھ بھال ہوگی. دین مبین اسلام میں بالغ ہونا جو ہے، واجبات کی پابندی، محرمات سے دوری کی طرف بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے مر جائے اس دنیا سے چلا جائے. کیا معنی بالغ ہونے سے پہلے چلا جائے؟ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے کیا معنی؟ بالغ ہونے سے پہلے نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی اگر اس دنیا سے چلا جائے گا، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں رہے، وہ جنت میں جائے گا. گو تعجب ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کافر کے، مشرک کے، ایتھیس کے گھر میں پلا ہے، لیکن ابھی تک اس کے پاس شرعی ذمہ داری اس پر لاگو نہیں ہے. اس کا انتقال جب ہو جائے گا اس پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ حقدار جنت ہوگا. اسی طرح سے دوسری شرط جو ہے عقل ہے. اگر عاقل ہوگا، ساؤنڈ ریزن ہوگی، اس کے پاس ریزننگ ہوگی، عقل صحیح ہوگی، ذمہ دار ہے. بلوغ پہلے شرط اور عقل دوسری شرط. ہمارے پاس بزرگ علماء جو گزرے ہیں، جیسے صاحب معراج السعادہ، مورل سائنس کی کتابوں میں سے بہترین کتاب کہی جاتی ہے، بہترین کتاب ہے بھی، اس میں بحث ہے کہ جنت میں سب نابالغ جتنے بھی سب جائیں گے، اور جنت میں جتنے دیوانے ہیں سب جائیں گے. दीवानों दीवाना चूंकि उस पर जिम्मेदारी ही नहीं है, अकल ही नहीं है, उसके रीजनिंग है, रीजनिंग ही नहीं है, साउंड नहीं है वो, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी जन्नत जिसमें बच्चे हों नाबालिग, ऐसी जन्नत जिसमें दीवाने हों, ऐसे जाना नहीं है, ब्रैकेट में बता रहा हूँ मैं, ऐसी जन्नत में हमको जाना नहीं है। जन्नत में जानना है वाशुर नमाहम, पहलू ये इमाम में रहना, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, जिम्मेदारी को अदा करना पड़ता, वाजिबात को अदा करना पड़ता, महरमा से दूर होना, मुहर्रमात से दूर होना पड़ता है। तो दीन मुबीन इस्लाम ने इस कानून को बताया है कि बालिग जब तक नहीं होगा उस पर जिम्मेदारी नहीं होगी। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि एक बुलूग के ज़माने आगाज़ को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मौला, इंसान के सिन्ने बुलूग तक पहुँचने के बाद हुदूद इलाही मुकम्मल तौर पर उसके नफ़ा और नुकसान में जारी हो जाएंगे, यानी शरई हुदूद जितने भी हैं उस पर जारी हो जाएंगे जैसे बालिग हो जाएगा। इन्हें लड़की 9 साल की और लड़का जो 13-14 साल का, लास्ट जो है एज 15 है। इससे पता चल रहा है कि जिम्मेदारी जो है, एहसास जिम्मेदारी उस एज में आ सकती है, प्रोवाइडेड पेरेंट्स जो हैं उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं और सब लोग जो लोग इज्तिमा में काम करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और उनका पब्लिक रिलेशन है, वो लोग ये किस्से जानते ही हैं। जैसे बहुत सी लड़कियां जो अब्यूज़ होती हैं, हो अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुमकिन है कि सगे भाई, सगे मामू, सगे चचा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, इस तरह का कोई केस है, तो अगर वो बालिग होने से पहले हैं तो वो बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, बालिग होने के बाद खुद जिम्मेदारी। कब? इंशाल्लाह बहस होगी फिर। इसीलिए नाज़रीन से गुजारिश है कि शरीयत को इजी ना लें, शरीयत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया मगर एक चीज़ नहीं सिखा, दीन क्या है, दीन क्या है, और इन रिटर्न क्या होगा हम पर, वो जो न मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। बाज़ रिवायत में है कि रोज़े क़ियामत, माफ़ी चाहता हूँ मैं, रोज़े क़ियामत बाज़ लोगों के नाम आमाल में वो अमल होगा जो बाप ने नहीं किया है, माँ बाप ने नहीं किया। ये पुकारेंगे परवरदिगार, ये क्या मसला है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फाइलिंग सिस्टम है कि इधर से उधर होगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, आवाज़ कुदरत आएगी ना, ये तुमने गुनाह नहीं किया है, तुम्हारे वो बच्चों ने, नाबालिगों ने बच्चों इससे पता चलता है कि जिम्मेदारी माँ बाप की कितनी ज्यादा है, शरी हुदूद का समझाना कितना अहम है। तो बालिग होने से पहले शरीयत दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेसिक उसके नीड्स के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी मर्जा की तौज़ील मसाइल उठा करके देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि उन तमाम मसाइल का जो डे टू डे लाइफ में मोमिन के काम आती हैं, ज़रूरी हैं, उन तमाम मसाइल का जानना वाजिब है। तहारत से लेकर के, तकलीफ से लेकर के तहारत, नजासात, उसके बाद वुज़ू के अहकामात, नमाज के अहकामात, रोज़े के अहकामात वगैरह, जो बेसिक्स हैं, आउटलाइंस हैं, इनसे वाकिफ होना चाहिए। इसीलिए जो लोग संडे मदरसाज वगैरह जो चलाते हैं वेस्टर्न कंट्री में, उनसे गुजारिश है, सैटरडे मदरसे जो चलाते हैं, तो कैरिकुलम को इस तरह से बना दें कि 9 साल से पहले लड़की के लिए, बालिग होने से पहले लड़के के लिए, वो तमाम मसाइल जो बहुत अहम हैं उनको बता दिया जाए। मुमकिन है कि पेरेंट्स शाई आउट हो जाए, लेकिन स्कूल मदरसे ये लोग बताएं। हालांकि पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी है, जैसे बेटी माँ को, माँ बेटी को बताए, बाप बेटे को बताए, बहुत ही अच्छे मैनर से, बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से, और ये ना शय आउट ना हो जाए, शर्मिंदा ना हो जाए, इसलिए कि मसाइल दीन सिखाने में शर्मिंदगी नहीं है, ये कल्चरल बातें हैं, और सलीके से तरीके से बताना चाहिए। तीसरी शर्त है, वो है इल्म के हासिल करने के इम्कानात। ये भी बहुत अहम है, इसमें वेग स्टेटमेंट्स भी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि इंसान ये समझे कि चूंकि मुझे इल्म ही नहीं था इसलिए मैंने ये गुनाह किया। मसलन अगर आप एक कंट्री में रहते हैं, वहाँ के कंट्री के कानून से आपको वाकिफियत होना चाहिए, अगर कोई ड्राइव करे, ड्राइविंग शुरू कर दे और पुलिस को किसी वजह से पकड़े और ये जवाब दे कि मुझे कानून मालूम नहीं था, तो चलने वाला नहीं है, तो आपने बैठा ही क्यों वहाँ पर, गाड़ी चलाई कानून मालूम नहीं था तो। ड्राइविंग से पहले तमाम कवानीन मालूम होना चाहिए तुम्हें। ये जो शर्त है कि इल्म के हासिल करने के, इल्म होना चाहिए शरीयत का, या इल्म के हासिल करने के इम्कानात होना चाहिए, इसको ज़रा सा अच्छी तरह से समझें और एलोबरेट भी हम लोग अच्छी तरह से करें इस चीज़ को। इंडिया के कोई किसी जंगल में कोई पैदा हुआ इंसान मर गया, इसी तरह से अफ्रीका के जंगल में कोई पैदा हुआ मर गया, हत्ता इंसानी माशरे में रहा लेकिन उसके लिए माहौल ही नहीं मिला कि वो शरीयत की, दीन की बातों को पहुंचा सके। इसमें एक और ज़िम्मेदारी जो लागू होती है वो मुस्लिम उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारी दूसरे मुसलमान से मुतालिक, अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर का बहुत बड़ा चैप्टर है। चुनाचे जो आजकल इंडोनेशिया की जो रिपोर्ट आ रही है, जो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर लार्ज नंबर पर मसीही हो रहे हैं, क्रिश्चियन हो रहे हैं, ये दी अदर वे, अमेरिका में मुसलमान हो रहे हैं मसीही, और वहाँ पर मुसलमान मसीही हो रहे हैं, क्रिश्चियन हो रहा है। अभी उठा करके देखिए रिपोर्ट क्यों, इसलिए कि दीन को एक तो समझाना जैसे चाहिए नहीं समझाया गया, दूसरे दीन को समझा ही नहीं गया, यानी बताया ही नहीं गया, कवानीन दीन मालूम ही नहीं है। अगर एक बच्चा मालूम है कि इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं है दुनिया में, तो फिर वो क्रिश्चियन जाने नहीं, यानी पीएचडी के बाद वापस पलट के आना तो ये अक्लमंदी की बात ही नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं तारीख में कि मसलन किसी शख्स ने कोई गुनाह किया, उसको हुदूद इलाही के इजरा के मौके पर उसने बताया कि मुझे ये कानून मालूम नहीं था। जो किस्सा वो मशहूर है कि ये लॉ जो था मुझे मालूम नहीं था कि इसमें सजा भी दीन इस्लाम है, आई डिडंट नो। फिर मौला अमीर ममनीन ने उसके वतन उस तमाम इन्वेस्टिगेशन को करने का हुक्म दिया कि हकीकत में ये बात सच्ची कह रहा है कि कोई वहाँ पर मुबल्ले कोई पयाम पहुँचाने वाला पहुँचाया है कि नहीं पहुँचाया है, और उसने भी कोशिश की है कि नहीं की है, सिर्फ ये कह देना कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये मुझे कानून मालूम नहीं था इसलिए वो चलने वाला नहीं है। मगर ये शर्त बहुत अहम है, मीन्स ऑफ नॉलेज, इल्म के हासिल करने के इस तमाम सिस्टम जो हैं उसके लिए मुहैया होना चाहिए। उनमें सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है। अभी हाल ही में एक केस, नौजवान बच्चा जो है, आई एम एन एथिस्ट डैड आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मुसलमान बच्चा बाप से कह रहा है आई एम एन एथिस्ट आई डोंट, ये तमाम आप लोगों की चक्कर है। उसकी वजूहत क्या हैं, इसलिए कि माँ बाप ने खुद जो है दीन को सेकेंडरी लेवल पर रखा या थर्ड लेवल पर रखा था, कि कभी हुआ तो कभी ईद की नमाज हो गई तो घर में वो माहौल ही पैदा नहीं हुआ। हुसूल इल्म के मीन्स को हासिल करने, इल्म के हासिल करने के तमाम जो सरकमस्टेंसेस हैं उनका मुहैया करना माँ बाप पे पहला फ़र्ज़ है, और दूसरा फरीज़ा स्कूल्स पे है, स्कूल्स भी हमारे नहीं है, सेकुलर स्कूल्स हैं। तीसरे जो है सोसाइटी है, सोसाइटी भी अक्सर मकामात पर मुस्लिम सोसाइटी नहीं है। जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है और ये ना हो तो फिर इसके माने के और बदतर हालात हैं। पहली शर्त बालिग हो, दूसरी शर्त आकिल हो, तीसरी शर्त बहुत अहम है कि ये जो आकिल हो बालिग इंसान को हुदूद दीन के हुसूल करने के राहें आसानी से मुहैया हों, और अगर उसको शरीयत दीन मोहम्मदी मालूम नहीं है, उसने गुनाह किया है, तो ये सज़ा दे जा सकती या नहीं दे जा सकती, बहस है यहाँ पर। और हकीकत में वो सिंसियर है कि वो कह रहा है कि जी आई डिडंट नो, और मुझे मालूम नहीं था कि इसकी सज़ा भी है। इस सिलसिले में फ़राइज़ से मुतालिक इल्म या इसे हासिल करने के इम्कानात को अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी के लिए एक शर्त क्यों माना गया है, बहस है। इल्म की शर्त और इसकी मौजूदगी की ज़रूरत के सिलसिले में इस क्यों का जवाब देने के लिए फितरी, विजदानी, अकली व अकलानी और दीनी लिहाज से मुतअद्दद दलीलें पेश की गई। ये क्यों पेश किया गया, क्यों, वाई इज़ दिस, कि एक शख्स मालूम होना चाहिए उसको, मालूम करने के उसको तमाम मालूमात करने के लिए तमाम सरकमस्टेंसेस उसके लिए ज़रूरी हैं, और उसे मालूम नहीं हुआ है तो शरीयत उसको कहती है कि ना भाई सज़ा देने में रुको, ज़रा सा मालूमात करो। इसकी दलीलें क्या हैं? पहली दलील यह है कि इस्लाम का साल इंसान का सालिम विजदान, अनटच्ड ह्यूमन इंस्टिंक्ट, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वा, वो विजदान ये कहता है कि सजा के ऐलान और इबलाग के बगैर इस वक्त तक पसंद नहीं करता जब तक वो अपने फरीजे से मुतालिक इल्म के हासिल करने में कोताही ना करे। एक तो मालूम नहीं था, सिर्फ मालूम नहीं था नहीं चलता। मसलन मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी और पुलिस ने पकड़ा, मैंने मुझे मालूम नहीं था कानून, पुलिस कह के गेट आउट ऑफ हियर, लॉ लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मालूम नहीं था तो बैठे क्यों तुम, वो मालूम नहीं था नहीं चला। एक मरतबा सिंसियरली मालूम करने की कोशिश की, वो इल्म हासिल नहीं हो सका, फिर गुनाह हुआ, फिर वो क्राइम हुआ, तो उसके लिए अलग। हाँ, ये बयान करना मुनासिब है कि ये शर्त हत्ता उस नज़रिए की सूरत में भी काबिल कबूल है कि बदला और सज़ा को अखलाकी अमल की तबीई नतीजे में नतीजा मान लें, क्योंकि ये वो लोग भी जो अमल और बदले के दरमियान करारदादी राबते की नफ़ी करते हैं और तकवीनी राबते को तबीई नतीजे में मान लें कबूल करते हैं, अमल का लिहाज इसके मानवी अनासर के साथ करते हैं, न कि फ़कत मादी अनसर के साथ। क्या माने हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितनी भी सज़ाएं हैं उनका इनडायरेक्ट डायरेक्ट राबता जो है इकोनॉमी है, मादी है। इस्लाम में मानवी फर्स्ट है। वकुंत अंतर रकीब अमिम वराए हैं, परवदिगार मैंने ये जो अमल किया है, ये नकीर और मुनकर जो वो लिख रहे हैं आशब जुम्मा है, बेहतरीन जुमला भी है। लेकिन अगर वो लोग चूक भी जाएं, यानी मुमकिन है कि उनसे अदा भी ना हो, देख भी ना पाए, वकुंत अंतर रकीब में वराए, मगर तू देख रहा, ये बहुत अच्छी तरह से समझे। दूसरी दलील अक्ल, फरीज़े से मुतालिक इल्म आगाही को फरीज़े की अंजामदेही के लिए तकवीनी और फ़लसफ़ी शर्त के तौर पर माननी है, और इस बिना पर इसके फुकदान की सूरत में फरीज़े की अंजामदेही को महाल जानती है। मसलन हमें हमने कहा कि अक्ल का होना ज़रूरी है, अक्ल ही नहीं रही तो फिर उसके पास फिर क्या बहस करेंगे। तो यहीं पर आता अल्लाह युकल्लफुल्लाह नफ्सन इल्ला मा वुसअहा, कैपेसिटी के अतबार से अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है। और एक आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, परवरदिगार जो तकलीफ दिया है हमारी अता के अतबार से, जो मुझसे सवालात होंगे, जो एक जनरल मोमिन से सवाल होंगे, जो मुझसे बड़े आलिम से, मुजतहिद से जो सवाल होंगे, मरजा से जो सवाल होंगे, बहुत फ़र्क होगा। इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। यहीं पर है हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन। हसनातुल अबरार, नेक लोगों की नेकियां, लेकिन मुकर्रबीन के लिए गुनाह है। हजरत आदम चूंकि खलीफतुल्लाह हैं, उनका तर्क उला भी इतना सजा का बाइस है कि उनको 40 साल रोना पड़ता है, जन्नत से निकाले जाते हैं। वाजिब अदा तर्क का नहीं किया, तर्क ओला है, अच्छी चीज़ थी कि वो तर्क ना करते, अच्छी थी, अच्छी चीज़ थी कि वो जाते ना करीब दरख्त के करीब। लेकिन मकाम में हजरत आदम बुलंद है। मसलन सवाल करें भाई, कोई आलिम को देखा आपने जो नमाज पढ़ाता है, जो लोगों की निगाह में इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं, वो बीच मार्केट में लेकर के सैंडविच लेकर रास्ता खाते हुए चले जाए, हराम काम नहीं किया है वो, लेकिन नहीं होता, इसलिए कि वो मकाम उसका वही सैंडविच है जो एक आम इंसान लेके खा ले, मोमिन लेके खा के चला जाए, रास्ते में खाता रहे, उसके लिए भी मकरूह, लेकिन कोई नोट नहीं करेगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझें, ये जो शर्त लगाई गई है उसकी कैपेसिटी भी ज़ाते परवरदिगार भी देखेगा। उसी तरह से एक जंगल में मर जाने वाला जिस तक दीन नहीं पहुंचा है, दो ज़िम्मेदार हैं, एक वो है कि मुसलमानों ने उस तक दीन नहीं पहुंचाया क्यों, दूसरे वो आया इतनी सलाहियत उसमें मौजूद थी कि वो दीन की तलाश करता, तो एक वास्त दुनिया खुलती है। ये दीन मुबीन की, इस्लाम की खूबसूरती है मॉरल साइंस में, हुसूल इल्म अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। तीसरी दलील अकलानी और इरफानी विजदान। नामालूम फरीजा है, फरीजा है मगर मालूम नहीं है। आया जो फरीजा मालूम नहीं है उसकी सजा का मुस्तहक है, उसको इस्तेहकाक का फरीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि समाज के अक्लमंद लोग अपने मातहत रहने वालों को इस दस्तूर की बिना पर जो उनके लिए ऐलान नहीं हुआ उन तक नहीं पहुंचा है, या जिसके दस्तियाबी में लोगों ने कोताही और तकसीर नहीं की है, जवाबदेही और सज़ा का मुस्तहक नहीं जानते। इन्हें ये जानते हैं कि एक शख्स को लाया गया जिसको कवानीन जो है पर्टिकुलर लॉज वाकिफ नहीं थे, और उसने स्ट्रगल भी किया, मालूम उसको वो लॉ तक पहुँच ही नहीं पाया, उसको किसी ने पहुँचाया नहीं, और उसने स्ट्रगल भी की लेकिन वो मालूम नहीं हुआ। तो अक्लमंद हजरात कहते हैं ऐसे शख्स को सज़ा नहीं होना चाहिए। चौथी दलील है किताब व सुन्नत में मज़कूरा कायदा। क्या मज़कूर? कुब है एकाब बिला बयान। क्या माने? मैं टर्मिनोलॉजी के यूज़ करने का आदी नहीं हूँ, आप लोगों को बोर हो जाएंगे इसमें। सीधे लफ्ज़ों में कुरान की आयत, अमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, बहुत ही अहम है। वलकद बअथना फी कुल उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा है, हर ग्रुप में भेजा है। और जहां पर ये कहा गया वहां पर वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन, हम आज़ाब नहीं नाजिल करेंगे जब तक कि हमारा रसूल वहाँ ना पहुँचा, यानी पयाम परवरदिगार ना पहुँचा। बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के पोर्शन में इसको समझाने की कोशिश करूँ। आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल साइंस इन इस्लाम। देर आर इन ऑर्डर टू बी practical person in regards to the morality of Islam, mere morality of behavior, there are conditions has been put forward. The first and foremost condition is the bulugh. Bulugh is maturity. Maturity, there are so many kinds of maturity. One is bulugh shari'i, bulugh aqli, bulugh mali, and bulugh ashad. I don't want to go each and every in detail, but here is bulugh shari'i means a person is responsible at this age according to Shariat of Islam. A girl is responsible at the age of 9. That's why in Islam it says from 7th year parents has to start a little bit vigilant about the prayers of that child from 7 years for daughters and for the children, because they have to get used to the 5 times prayer. Why from 7 years? So that in 2 years they are acquainted with the knowledge of Salat, they should know the laws and Sharia laws, and also they are getting used to the 5 times prayer, likewise the fast. And there should be, even Islam says punishment is not hitting someone, no, in Islam never allows that. Privileges and taking out privileges, it's a saza. For example, if you have a girl who is 7 years and you always first stand As-Salat, Allahu Akbar, you and your wife, I always say from childhood, don't ask them come to prayer. No. Usually human being is like, they're children of Adam. Allah asked Adam not to go near to the tree. He did go. So we should not be commandal phrase should use. Even negative commandal phrase should not be used. Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. It's not a good thing. Do this, not, no. You be practical, and that practicality of parents will go into effect. If parents at the time of Salah, they close the TV, they close everything, they stand on Musalla, kids are from childhood, they are watching, it is going to affect them. At the same time, back to Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda. Rabbi ij'alni muqima salat wa min durriyati. Oh Allah, make me a person who is establisher of the salat, and my children also. First me. If I do not follow, children are not going to follow. I am lying down on couch and asking my daughter, go and pray namaz. She might pray, but it's not going to affect. But if you stand and don't call her, she might come beside you. But after 7, Islam says, now it is the time to gear up the process. Now you have, parents have to say, no. Daughter, my son, let's start Salat now. Let's do Salat now today. Let's together. If one day or another, one time, sometimes kids, they say, no, I don't want to do. Okay, if you don't do this, that time which is allocated for you, for your TV program, will going to know there is a curfew for you. This is privilege, taking out privilege. I am giving an example. Any interesting act which a child does can be taken away by, that is a punishment. Punishment is not hitting. Never, never do that. Islam has never allowed us to do so. So from 7 years, Islam says, because a daughter is becoming baligh at the time of 9, this is bulugh shari'i. It's a maturity according to Sharia. And Imam Muhammad Baqir says, it is important they should know the ahkamat, needed rulings of Islam within that time. So our Sunday madrasas, our Saturday madrasas, our regular madrasa, or all over the world, those who are running the madrasas, they have the responsibility. Parents have the responsibility to teach their children before night. The all the Sharia rulings about Salat, about Halal and Haram and etc. So first condition is Bulugh. Bulugh is maturity of Sharia maturity, not Aqli. Number three is Aqli maturity, that he should be wise enough. Insane and sane. So Aql also plays a greater role. Reasoning also plays. A person who has a problem, psychological problem, any problem, his responsibility is not there. As a mad person, mad has no responsibility. Divoni has no responsibility. He is going to go to Jannah because he has no responsibility. A non-baligh child is going to go to Jannah because he has no responsibility. If he dies, he or she dies, according to Sharia. Number three condition is there should be circumstances available to know the knowledge, to know the rulings of Islam. And the person himself has to struggle for that. At the same time, the society, the parents, everybody, they have responsible to give the knowledge. In regards to this, there are again question comes. This knowledge aspect, a person has to know the rulings. And if he is not aware of the rulings, that means he has completely different court. Why it is? The first proof is, a person who has a clean instinct, if you bring the case in front of that person and say, this person is unaware of these laws and has committed that particular sin. A solemn vijdan, a clear and a pure instinct tells this person should not be punished. So that means knowledge of the rules is very important. It has to reach to that person is very important. And now, the circumstances in which he is existing, we have to discuss, we have to know. Number two, proof. First proof is every knowledge, a reasonable person knows laws are applicable upon a person who is aware of the laws. And sometimes he is not aware of. If he is not aware of and he has done committed a crime, so for such a person, there has to have some leniency. The second condition is his reasoning of the Sharia, Farida, obligations. He has to have that knowledge. And maybe for some people it is very impossible to know. They live in a place, in a circumstances, they don't have any possibility of knowing it. For such people, the conditions are same. It's not different. Number three is namalum fariza. We don't know the laws in particular area. A person is not aware of the laws of particular area. And he commits that. For such a person who is really not aware of, the rulings should be different. So do we have so many stories? A person has been brought in the courtyard of second Khalif, and he has been convicted of some kind of crimes. A person, before he has to be lashed, he said, I didn't know this law. So this case came to Imam Ali. Imam Ali said, yes, stop. He varies from he. Mubalighin has gone there or not. He is sincere in this argument or not. It has to be researched. And accordingly, he should be punished. Or maybe not punished. Number four, the four proof is in the Quran, in the Holy Quran, in the tradition of our beloved Prophet Muhammad and Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, it is been said qubh iqab iqab bila bayan, and Allah subhanahu wa ta'ala is not going to punish a person without the knowledge and a clear knowledge for that person. The ayah, Surah Asra, 17th chapter, ayah number 15, is a beautiful ayah if you want to see. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ. We are not going to punish no one. We are not going to be punishers. حَتَّى until and unless نَبْعَثَ رَسُولًا. Until and unless we have sent forth our Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala says. This is a very beautiful argument, and we need to understand thoroughly this. It's not an easy thing. Just like another ayah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. In each and every nation, there was a Rasul. So I'm living in Canada for Red Indians. Who was the Rasul? For Indians, those, who was the Rasul? For the jungles of Africa, who was the Rasul? Why Quran says we have sent forth Rasul? So answer to that is, maybe Rasul has not gone, has not been sent their area. The messenger has not gone, message has been gone. That is a beautiful thing. So that shows also responsibility of Muslim Ummah towards this, conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the others. Allah says, I will not going to punish those until I send my Prophet. Okay, Prophet is not there. That means until I send my Rasul, messenger. So messenger is not there, but message has gone there. If message is not going, what is going to happen? What we see nowadays, we hear the news in Indonesia, the largest Muslim country, the youths are attracted towards the Christianity. On the other hand, in America, every year 20,000 Muslims, Christians are becoming Muslims. Why these two? Here is reasoning is mature, there is reasoning is not mature. So that is the responsibility of Amr bil Ma'aruf and Nahi anil Munkar in Muslim countries, much more gravier than the non-Muslim countries. Here also we do have responsibility to convey Islam as is, not as Islam has preached by maybe ISIS or Taliban or Al-Qaeda. Nothing to do with Islam. They are not state, they are not Muslims. Cutting the throat, cutting the burning the kids, women, innocent people. Where is Islam? We don't have such an Islam. Islam has never taught us such a thing. Islam is peace. And this law tells us, this moral science is so beautiful. You cannot punish a person until the message has to be read. مَمَا كُنَّ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. We're not going to punish until we send the messenger. If messenger is not good, message has to go there. And now we are the Muslims, we have much more gravest responsibility on our shoulders. On the day of judgment, one person, maybe my neighbor is going to caught me. You were there with me for so many years. What you have done? You never sent me a message of your Prophet. It could be possible. That's why Quran says, لا يكلف الله نفسا إلا ما أسعها. अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी द रूलिंग्स. एंड अनदर आयत इन सूरत तलाक आया नंबर 17, لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. Given ability and responsibility. Given ability. So this is the adl of Allah subhanahu wa ta'ala. This is justice. Such a moral. My capacity different than each and everyone, those who are watching. And capacity of a higher alim is much more different than. A marja's capacity is different than this. It reminds me a story of Ayatollah Burujardin in his Darsa Kharij. He reminded this. Last night I saw a dream. And there are doors of Jannat were open. There are people were lining up. In one door there were so many people. I asked them, this line is for what? This door is belongs to Imam Hussain. Allahu Akbar. Laylatul Jum'ah, inshallah, may Allah give us the shafa'at. Allahumma arzuqna ziyarat al-Husayn fi dunya wa shafa'at al-Husayn fi al-akhirah. Ilahi. May Allah give us the ma'rifat of the Imam. Ayatollah Burujardi says, I inquired the people, what is this door? Door of Imam Hussain alayhi salam. So I stood there and I was also one of the people who was waiting, and people were entering in the Jannah in that particular door of Imam Hussain. At that door, two angels, they were sharply watching who is entering there. Then when they reached to Ayatollah Burujardi, they said, come out. You are not supposed to be in this line. Oh my God, why? You are a faqih. You go to the line, door of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. Oh my God. He goes, there are very few people, those who are lining up. When my turn came, they were inquiring, this fatwa is from where, that fatwa is from where. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. What has been given to me, to you, to all, each and every person is different. And Allah subhanahu wa ta'ala is going to give reward or punishment according to the given abilities. This is the moral. This is so beautiful morals. Such a moral science in Islam. I hope we are understanding, we are getting closer to these things. And once we understand this, then you will enjoy. Number four, Qudrat, power. What do we mean by power? Power means a person knows these are the laws, but he reaches he has no power to act upon it. Maybe he is in a circumstances he has been asked to do the otherwise. Maybe contrary to the Sharia. Sometimes it happens in the cases. Just like we have taqayya, why we have taqayya? Because of this, is the qudra, the power. My brothers and sisters, religion of Islam is the best. And we'll all know it is best. The biggest problem with us is we don't know the Sharia. We don't know the rulings. So let's get involved ourselves. Because we are waiting for the Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif, who is going to bring Sharia into the masses. So I have to be well worth with the Islamic Sharia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.